अरे रानीसा, आपकी बहू का भी तो ये पहला तीज है ना? तीज का सामान बेचने आई उन औरतों में से एक ने अरुणिमा को देखकर ये सवाल किया। अरुणिमा हैरानी से उस औरत की तरफ देखती है और उसके इस सवाल पर तो जानवी और भूमि भी हैरान हो गए थे। भूमि का चेहरा नीचे झुक जाता है क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि तीज का त्यौहार मनाते कैसे हैं, तो वो कैसे इस त्यौहार के बारे में जानेगी? अरुणिमा भूमि की घबराहट समझ सकती थी। उसने भूमि का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, ये मेरी बहू की शादी के बाद पहला त्यौहार है और देखना, भूमि की पहली तीज ऐसी मनाई जाएगी कि सारा सिंघल याद रखेगा। अरुणिमा की बात सुनकर भूमि के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, पर तभी उन औरतों में से एक कहती है, लेकिन रानीसा, तीज का श्रृंगार तो मायके से आता है और हमने तो सुना है कि बहूरानी का कोई मायका ही नहीं है। अरुणिमा के दिल में एक चोट पहुंचती है और यही चोट इस समय भूमि भी महसूस कर पा रही थी। सच में उसका तो कोई मायका ही नहीं है जो उसके लिए तीज का सामान भेजेगा। तभी जानवी अपनी जगह से खड़ी होती है और भूमि के दूसरी तरफ बैठ जाती है। भूमि के एक तरफ अरुणिमा बैठी हुई थी और दूसरी तरफ जानवी। जानवी ने भूमि के हाथ को थामते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप लोग? पहले तो खुद ही कहती हैं कि बहू बेटी एक समान रहनी चाहिए और उसके बाद खुद ही उनमें अंतर करती हैं। अरे, हमारी बहू के ससुराल में किसी चीज़ की कमी है क्या? हम अपनी बहू का पहला तीज का त्यौहार ऐसे मनाएंगे जैसे कि कोई दिवाली का उत्सव मना रहा है। आप सब लोग आइएगा जरूर और खुद अपनी आंखों से देखिएगा कि हम अपनी बहूरानी की पहली तीज कितनी धूमधाम से मनाते हैं। भूमि हैरानी से जानवी को देखती हैं, तो अरुणिमा भी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, आखिर ये मेरी बहू का पहला त्यौहार है, इसका तो अच्छा होना बनता ही है। और क्या हुआ अगर मेरी बहू के लिए मायके से कोई सामान नहीं आएगा? तो मैं इसकी माँ हूँ, तो इसके लिए कुछ के लेने का हक मुझे है। वो सारी औरतें ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं। उनमें से एक औरत जो थोड़ी उम्रदार थी, वो भूमि और अरुणिमा की बलाई लेते हुए कहती है, नज़र न लगे तुम सास बहू की जोड़ी को। अगर दुनिया की हर सास थारे जैसी सोचने लगे रानीसा, तो इस दुनिया में कभी सास बहू का क्लेश ही ना हो। उसके बाद वो औरत अपनी टोकरी में से एक हरे कांच की चूड़ी उठाती है और भूमि की तरफ देते हुए कहती है, लो कितिया, ये तीज के त्यौहार के लिए मेरी तरफ से है। भूमि हैरानी से अरुणिमा को देखती है, तो अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है। भूमि कांच की चूड़ियाँ ले लेती है। उसके बाद अरुणिमा ने भी उनमें से तीज के इस्तेमाल में होने लायक श्रृंगार के सारे सामान खरीद लिए थे। थोड़ी देर बाद वो सारी औरतें वहाँ से चली गई थी और सिर्फ वहाँ पर भूमि, अरुणिमा और जानवी ही बैठे हुए थे। तभी आकाश सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। आज रॉयल ऑफिस में उसका पहला दिन था। आज वो सीईओ की कुर्सी संभालने के लिए जा रहा था, पर जैसे ही अरुणिमा पर उसकी नज़र पड़ती है, वो सख्ती से आकाश को रोकते हुए कहती है, रुको आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आकाश रुक जाता है और अरुणिमा को देखने लगता है। भूमि भी हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती है, तो अरुणिमा आकाश के पास आते हुए कहती है, आकाश, मैं चाहती हूँ कि तुम भूमि को लेकर शॉपिंग के लिए जाओ। वॉट माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और शॉपिंग पर? इम्पॉसिबल, हटिए मेरे रास्ते से, मुझे ऑफिस जाना है। आकाश ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तो अरुणिमा अपने दोनों हाथ बांधती है और घूरते हुए आकाश को देखकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम कहीं जाओगे तो सिर्फ भूमि को लेकर शॉपिंग पर जाओगे। दो दिन बाद तीज का त्यौहार है और भूमि का शादी के बाद ये पहला त्यौहार है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भूमि के लिए तीज में पहनने वाले कपड़े खरीदो। मेरी क्या कोई कपड़े की दुकान है? अगर उसे कुछ चाहिए तो वो खुद भी तो ले सकती है ना, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, और आप लोग भी तो हैं। मॉम प्लीज़, मेरी उससे शादी हुई है, मैंने उसे गोद नहीं लिया हुआ है। जो उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा करने के लिए मुझे उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, और ये जो भी फेस्टिवल है ये औरतों का है, प्लीज़ मुझे इसमें बीच में मत लाना। आज रॉयल ऑफिस में मेरा पहला दिन है और मैं वहीं जा रहा हूँ, आकाश ने अरुणिमा को देखते हुए कहा। तो अरुणिमा गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी भूमि अरुणिमा के बाजू को पकड़ती है और उसे धीरे से अपनी तरफ करते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप इन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, एक और साड़ी की क्या ज़रूरत है? आप इन्हें जाने दीजिए। अरुणिमा हैरान हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने भूमि का वो खिला हुआ चेहरा देखा था और उसे ऐसा लगा जैसे इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर अब ये क्या है? पर उसने कोई सवाल नहीं किया। आकाश वहाँ से चला जाता है और अरुणिमा हैरानी से बस उसे जाता हुआ देखते रह जाती है। आकाश के जाने के बाद अरुणिमा भूमि से कहती है, भूमि, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम तीज के लिए एक नई साड़ी खरीदो। मैं काम करती हूँ, शोरूम में फ़ोन करके कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डिज़ाइनर साड़ी निकाल कर रखें। दोपहर में मैं और तुम चलकर वो साड़ी ले लेंगे। भूमि मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और अरुणिमा सिर्फ आकाश के बारे में सोच रही थी। आकाश को समझना तो अरुणिमा के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वो भूमि के साथ कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है। दोपहर का वक्त, भूमि तैयार होकर अरुणिमा के कमरे में आती है तो देखती है अरुणिमा अपने सर पर एक पट्टी बांधकर बैठी हुई है। उसे ऐसा देखकर भूमि हैरान हो जाती है और घबराते हुए उससे कहती है, माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
अरुणिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा सरदर्द है। अरे तुम तो तैयार भी हो गई, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। लेकिन तभी भूमि ने अरुणिमा को रोकते हुए कहा, बैठ जाइए चुपचाप, आपके सर में दर्द हो रहा है और आप मेरे साथ बाहर चलने की बात कर रही हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे और मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, लाइए मैं आपका सर दबा देता हूँ। पर अरुणिमा ने भूमि के हाथ को थामते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं चाहिए तुम्हें नई साड़ी, जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हें वो साड़ी लेनी है तो मतलब लेनी है, और जहाँ तक बात रही सर दबाने की तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी अभी दवाई खाई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, मैंने शोरूम में फ़ोन करके कह दिया है, उन्होंने तुम्हारी साड़ी तैयार रखी होगी, तुम्हें बस जाकर उसे लेना है, तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। लेकिन माँ, अरुणिमा ने अपना हाथ दिखाकर भूमि को कहने से रोक दिया और उसे देखकर सख्ती से कहने लगी, ये तुम्हारी सास का ऑर्डर है, तुम ड्राइवर के साथ जाओ और उस साड़ी को लेकर आओ। एक बार के लिए भूमि अपनी माँ का कहना तो टाल सकती थी, लेकिन अपनी सास के ऑर्डर को कैसे मना करती। वो हाँ में सर हिलाती है और फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के साथ ही अरुणिमा अपना फ़ोन तकिए के नीचे से निकालती है और सीधे एक नंबर पर कॉल कर देती है। दो रिंग के बाद ही सामने से आस्तिक फ़ोन उठाता है और कहता है, बोलो अरु।
आस्तिक, मैंने भूमि को यहाँ से भेज दिया है, आप तैयार हैं? अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक अपने केबिन से बाहर जाकर देखता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अरे मैंने तुमसे वादा तो कर दिया था कि मैं आकाश को यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन लगता है पहले दिन ही वो हमारी कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में बदल रहा है। उसने रॉयल ऑफिस की ऐसी हालत करके रखी हुई है कि एम्प्लॉयज सिर्फ सांस ले रहे हैं, बाकी जिंदा कोई भी नहीं है। अरुणिमा गुस्से से कहती है, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आस्तिक, आपने मुझसे वादा किया था कि आप दोपहर तक आकाश को ऑफिस से भेज देंगे, मैंने भूमि को यहाँ से ड्राइवर के साथ भेज दिया है, आप आकाश को भेजिए। अगर आपने मुझसे किया अपना वादा पूरा नहीं किया ना आस्तिक, तो याद रखना आज रात आपको बेड से नीचे सोना पड़ेगा, और अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आया तो कमरे से बाहर भी।